بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سامنے بیٹھو. میرے مرشد میرے شیخ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک صاحب نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت اللہ اللہ کرتا ہوں, پتہ نہیں یہ اللہ اللہ قبول ہے بھی ہے کہ نہیں. تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے اللہ کے بعد دوسرا اللہ کا نام لینے کی توفیق وہ اسی وقت عطا فرماتے ہیں جب پہلے اللہ کو قبول فرما لیتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ عاشق کا کام یہ ہے کہ کیے جائے, اس پر نظر ہی نہ رکھے. جیسے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے فرمایا تھا کہ یہ جو تو عبادت کرتی ہے کہ قبول بھی ہے کہ نہیں, تو اس نے عرض کیا کہ میرا تو کام ہے اللہ تعالی کی بندگی بجا لانا, قبول کرنا ان کا کام ہے, عبادت کرنا میرا کام ہے. مطلب ہم اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ اس کو قبول فرمائیے, اور اللہ تعالیٰ اپنا کام اپنے ذمے رکھے, ان کا کام وہ جانے. اور یہی چیز کہ اللہ تعالیٰ عبادت کی جو توفیق عطا فرما رہے ہیں یہ بھی ان کا بڑا کرم ہے. اور ایک بات اور پوچھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت میں اللہ اللہ کر رہا ہوں, مجھے تو اس کا کوئی فائدہ ہی نظر نہیں آ رہا. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, کیا عارف لوگ تھے, کیا معرفت کی بات, فرمایا ارے ظالم یہ کم نفع اور فائدے کی بات ہے کہ اتنے بڑے مالک کا نام تیری زبان سے نکل رہا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے توفیق عطا فرما رہے ہیں کہ جبکہ مخلوق سوئی بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مسجد میں جمع فرما دیا, الحمدللہ. اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مسجد میں بھیج دیا, اور کسی کو حقیر نہ سمجھے کہ اگر کوئی سو رہا ہے تو اب پیار سے اپنے اس بھائی کو سمجھائے تو صحیح, لیکن اس کی حقارت دل میں نہ آئے کہ دیکھو کیسے نالائق ہے سو رہے ہیں, ایسا نہ ہو. اپنے اوپر جب اپنی پر بات آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے توفیق دی, نالائق تو میں بھی ہوں لیکن میری نالائقی پر آپ نے پردہ ڈال دیا اور مجھ کو توفیق دے دی, مسجد میں بھیج دیا. اور میرے بھائی وہ بیچارے جو نہ آ سکے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دیجئے, اپنی اس نعمت پر شکر ادا کریں اور اپنے بھائی کے لیے دعا کریں, بجائے اس کی اس کی غیبتیں کرے یا اس کی حقارت دل میں آئے, کہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دیجئے کہ عبادت اور فرما برداری کی. تو کتنے بڑے فائدے کی بات حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتنی بڑی معرفت کی بات سمجھائی کہ کتنے بڑے فائدے کی بات ہے کتنے بڑے مالک کا نام ہماری زبان سے نکلنا ہے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. ہماری زبان کی کیا حیثیت ہے, ہماری جان کی کیا حیثیت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے نام پر جمع فرمایا اور اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بھی میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ان کا کرم ہے اور ان کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھے اور اپنے کرم سے ذکر کی برکات عطا فرما دے. اور ذکر کی برکتیں یہی ہے कि हर लम्हा अल्लाह ताला की याद में रहे और गफलत में ना गुजरे। जिक्र की फायदा ये है, जिक्र का फायदा ये नहीं है कि हवाओं में उड़ने लगे, बल्कि जिक्र का फायदा ये है, जिक्र के माने याद करने के हैं, तो जिक्र का फायदा ये है कि भूले नहीं, बल्कि ऐसा हाल हो जाए कि भुलाता हूं फिर भी वो याद आ रहे हैं। मेरे मुर्शिद अक्सर ये मिसरा पढ़ते हैं, भुलाता हूं फिर भी वो याद आते हैं, यानी अगर भुलाना भी चाहे इतना अल्लाह ताला को याद करे कि फिर भी ना भूल सके, ऐसा चाहे वो मस्जिद हो, चाहे बाजार हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे घर हो, चाहे तन्हाई हो, चाहे जलवत हो, हर जगह अल्लाह ताला की याद गालिब रहे, ये है जिक्र का फायदा। और अल्लाह ताला की नाफरमानी और गुनाह में अल्लाह ताला की नाफरमानी और गुनाह न करना, ये अल्लाह ताला की याद का फायदा और समरा है। और बादशाहत हो, वजारत हो, हसीनों का आलम हो, यूरोप की दुनिया हो, सारा आलम हो, वो अल्लाह ताला की मर्जी को देखे बस कि मेरे मालिक मुझसे यहां क्या चाहते हैं। कि कोई हसीन सामने आ जाए, इस वक्त अल्लाह ताला मुझसे क्या चाहते हैं, और उस वक्त अल्लाह का जिक्र ये है और अल्लाह की याद का फायदा ये है कि अपनी नजर को हम नीचे कर लें। गुस्सा है, उसको गुस्से को काबू करें और अपने दिल में बड़ाई ना पैदा हो, वगैरह वगैरह। ये कुछ मिसाल के तौर पे बात पेश कर दी गई, ये है अल्लाह ताला की याद का और अल्लाह ताला के जिक्र का फायदा और समरा और नतीजा। अल्लाह ताला अपने करम से हम सबको अपनी याद की तौफीक अता फरमाए और गफलतों से हमारी हिफाजत फरमाए, गफलतों से अल्लाह ताला अपने करम से हमारी हिफाजत फरमाए। पंखा पीछे के चला दो, एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की हदीस शरीफ में आता है, जो शख्स रोजाना एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की पढ़ेगा उसका चेहरा कयामत के दिन 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। मेरे मुर्शिद मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे इस हदीस शरीफ की कि बाज़े लोग कहते हैं सिर्फ जिक्र काफी है, बाज़े लोग कहते हैं कि सिर्फ जिक्र काफी है, तो फरमाया कि इस हदीस शरीफ की बरकत से अल्लाह ताला जिसके लिए मुंह चमकाने का फैसला फरमाएंगे हैं तो मुंह चमकाने वाले आमाल यानी आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाएंगे और मुंह काला करने वाले आमाल यानी गुनाहों से हिफाजत नसीब फरमाएंगे, ये है इसके माने। और एक रिवायत में फरमाया कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी मिश्कात शरीफ की हदीस है, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह लैस लहा हिजाबुन दून अल्लाह, कि ला इलाहा इल्लल्लाह में और अल्लाह में कोई पर्दा कोई हिजाब नहीं है। हजरत ने ये शेर पढ़ा, निगाह इश्क तो बेपर्दा देखती है उसे, निगाह इश्क तो बेपर्दा देखती है उसे और खिरत के सामने अब तक हिजाब आलम है। निगाह इश्क तो बेपर्दा देखती है उसे, खिरत माने अकल, खिरत के सामने अब तक हिजाब आलम है, हिजाब पड़े हुए और मोहब्बत की निगाह से आशिक अल्लाह ताला के कुर्ब और अल्लाह ताला की तजल्लियात के मजे लूट रहा है। ये निगाह मोहब्बत का असर है और जिक्र की बरकत से दिल की आंख बनती है। और फरमाया करते थे हजरत के जब सुभान अल्लाह, फरमाया कि मौला हजरत मौलाना बद्र आलम साहब मीठी रहमतुल्लाह अलैह जो कि मदीना शरीफ के कब्रस्तान जन्नतुल बकी के अंदर दफन है, उन्होंने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह की परवाज ऐसी है कि जमीन से परवास करती है, सातों आसमान पार करके अर्श आजम पर अल्लाह ताला की तजल्ली से मुलाकात करती है। और फरमाया कि फिर हजरत ने शेर पढ़ा कि नजर वो है जो इस कौनो मकान के पार हो जाए, नजर वो है जो इस कौनो मकान के पार हो जाए मगर जब रूए ताबा पे पड़े तो बेकार हो जाए। वाह, रूए ताबा महबूब के चेहरे की से के रोशन चेहरा मगर जब उस रूए ताबा पे, ये मकसूद हासिल हो गया ना कि जिक्र का मकसद था महबूब को पाना, अब महबूब को पाया मगर जब उस रुए ताबा पे पड़े तो बेकार हो जाए। अब महबूब को पाया, बस अब महबूब के जलवों में मस्त है। सुभान अल्लाह, ऐसा अल्लाह ताला अपने जिक्र की तौफीक हमें अता फरमा दे। और जब ला इलाहा कहे तो ये ध्यान करें कि तमाम गैरुल्लाह मेरे दिल से निकल गए, और इल्लल्लाह से अर्श आजम से एक नूर का सुतून है जिससे नूर मेरे दिल में आ रहा है। इस तरह से अल्लाह ला इलाहा का जिक्र करें। और हजरत फरमाते थे ऐसे चार जानू जिक्र में बैठे ताकि आराम से कुछ झूमा झूमी भी करे, जरा आशिकाना जिक्र करे। इसका नाम आशिकाना जिक्र है, थोड़ा सा झूमना। कुरान पाक पढ़ते हुए भी जरा झूलते हैं और झूमते हैं, और इसी तरीके से जिक्र में भी सही से बैठो, थोड़ा आगे होके हो जाओ। जब जगह मौजूद है तो सेटिंग खुद ही करो, तो थोड़ा सा जिक्र जो है वो आशिकाना करे और तवज्जो के साथ जिक्र करे। ये नहीं कि जिक्र कर रहा है उधर उधर देख रहा है उसको उधर उधर, बल्कि अपने दिल ध्यान दिल की तरफ दे कि हमारे दिल से गैरुल्लाह निकल जाए, और तवज्जो के साथ जिक्र करे। तो
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو اور میرے تن میں بجائے آب گل اور میرے تن میں بجائے آب گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدر تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و ناماسیہ مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و ناماسیہ تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے میرے سارے گناہ تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے میرے سارے گناہ اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں ہے میرے انعام لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
اکثر حضرات ایک شکایت یہ کرتے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں ہمارا دل نہیں لگتا ذکر کرتے ہیں دل نہیں لگتا بزرگوں نے فرمایا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ دیکھو تم اللہ اللہ کرو دل بھی لگنے لگے گا اس چیز کی پرواہ مت کرو کہ دل نہیں لگتا بلکہ اللہ کا نام لینا شروع کرو دل بھی لگنے لگے گا مزہ بھی آنے لگے گا دل بھی لگنے لگے گا اور مزہ بھی آنے لگے گا اتنا یاد کرے کہ انشاءاللہ تعالی پھر اس کے بغیر تو اللہ کا نام لیے بغیر ہمیں چین ہی نہ آئے اتنا اللہ کو یاد کرے اللہ تعالی کو اتنا یاد کرے دادا نام لینا شروع کرے دل لگنا بھی شروع ہو جائے گا اور اگر اس کی طرف توجہ کی دل نہیں لگتا تو نتیجہ یہ گا کہ اس نام سے بھی محروم ہو جائے گا. एक तस्बीह अल्लाह का नाम इस तरह से लें कि एक जबान मेरे मुंह में है और एक जबान मेरे दिल में है और दोनों से अल्लाह का नाम निकल रहा है, यानी अपनी जबान से भी और दिल की जबान से भी, यानी दिल जबान के साथ है, जबान दिल के साथ है, दिल जबान के साथ है, इस तरह से अल्लाह का नाम लें। पहले अल्लाह पर जल्ला जलालू कहें और चलिए जनाब।
अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह जल्ला जलालुहु तआला शानु, अल्लाह 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 कैसा प्यारा नाम है, अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह 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 कैसा प्यारा नाम है, अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है, आशिकों का मीना और जाम है। नारे मस्ताना खुशमी आए दम, नारे मस्ताना खुशमी आए दम, ताबद जाना चुनी में बाए दम, ताबद जाना चुनी में बाए दम, जुज्ब जिक्र खेश मशगूलम मकुन, जुज्ब जिक्र खेश मशगूलम मकुन, अज़करम मज़िश्क माज़ूलम मकुन, अज़करम मज़िश्क माज़ूलम मकुन। अल्लाह 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 कैसा प्यारा नाम है, अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह 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 कैसा प्यारा नाम है, अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है, आशिकों का मीना और जाम है। ऐ खुदाई बंदारा रुस्वा मकुन, ऐ खुदाई बंदारा रुस्वा मकुन, गर्भदम मन सिर मन पैदा मकुन गर्भदम मन सिर मन पैदा मकुन या करीम अल-अफ़ सत्तार अल-उयूब या करीम अल-अफ़ सत्तार अल-उयूब इंतकाम अज़मा कश अंदर ज़ुनूब इंतकाम अज़मा कश अंदर ज़ुनूब यार शबरा रोज महजूरी मदे यार शबरा रोज महजूरी मदे जाने कुर्बत दीदारा दूरी मदे जाने कुर्बत दीदारा दूरी मदे अल्लाह 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 जल्ला जलालु व तआला शानु
मखलूक के अरशर से हिफाजत के लिए तमाम मखलूकात के अरशर से हिफाजत के लिए तीनों कुल तीन तीन मरतबा सुबह शाम पढ़ने का मामूल बनाए। सरवर आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकफीका मिन कुल्ली शय कि तुझे हर चीज के लिए काफी हो जाएगा। हज़रत मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तकफीका मिन कुल्ली शर हर शर के लिए काफी हो जाएगा। औ मिन कुल्ली विरदिन या दाब वज़ुबी हर वो वजीफा जो हिफाजत का तू पाता है उसके लिए काफी हो जाएगा। अब जादू है सहर है उसको बस मुस्तकिल पढ़ता रहे सुबह शाम फजर के बाद मगरिब के बाद पाबंदी से पढ़ता रहे इसको इंशाअल्लाह ताला मुज़िर असरात खत्म हो जाएंगे। जो असरात हैं वो खत्म हो जाएंगे और आने वाले असरात से हिफाजत रहेगी। بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم हज़रत वाला रहमतुल्लाह अलैह के सारे सवाब के लिए तीन मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ लें कुल अल्लाह कि अल्लाह ताला ने सहाबतों में असर रखा है। इंसान एक कायदा है तजर्बे की बात यह है कि अगर चार दोस्त कहीं जा रहे हैं तीन नमाजी हैं और एक नमाजी नहीं है तो चौथा भी नमाज पढ़ेगा और अगर तीन नमाजी नहीं है एक नमाजी है तो वो भी छोड़ देगा। तो सहाबत का असर हज़रत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे मेरे शेख और मुर्शिद हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब نظر اللہ مرقدہ. فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے کہ فلا لڑکا بڑا اچھا تھا, بری صحبت نے اس کو برباد کر دیا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بری صحبت برباد کر سکتی ہے تو اچھی صحبت آباد نہ کرے گی. فرمایا بری صحبت کو تسلیم کرتے ہو کہ بری صحبت میں برباد ہو گیا تو اچھی صحبت میں آباد نہ ہو. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میرے شیخ سناتے تھے حکیم الامت کی روایت سے کہ ایک دیہاتی نے اپنے لڑکے کو آوارہ گھومتا تھا اس کو حاجی صاحب کے پاس بھیج دیا. ایک عرصہ وہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہا, سید الطائفہ شیخ العرب والعجم. تو اب اس کے بعد جب واپس آئے تو باپ کھیتوں میں کام کرتا تھا, اس نے کہا کہ بھائی چل جا کھیت میں پانی لگا کے, اب پانی کی باری. اب وہ اٹھا صبح, اس نے دیکھا یہ تہجد کا وقت ہے, اس نے نماز شروع کر دی. پانی بھی دے رہا, نماز پڑھنے میں کیا وقت لگتی ہے. وہ بیٹھے کھودنے سے اس نے کہا اللہ اللہ کرو, پانی اپنا کام کر رہا ہے ہم اپنا کام کریں. اب ایک دن دو تین دن اس نے دیکھا تو پھر حاجی صاحب کے پاس آیا اور حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے شکایتن کہا کہ میں نے تو آپ کے اپنے لڑکے کو آپ کے پاس بنانے کے لیے بھیجا تھا, آپ نے تو اس کو بگاڑ دیا. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو جوش آیا اور جوش میں فرمایا ہم بھی بگڑے ہوئے ہیں, ہمیں بگاڑ نہیں آتا ہے, ہم بھی کسی کے بگاڑے ہوئے ہیں, ہم بھی کسی کے بگاڑے ہوئے ہیں, ہمیں بگاڑ نہیں آتا ہے. یعنی یہ کتنی عجیب بات ہے, ایک رویہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ وہ لڑکا جو آوارہ گھوم رہا ہے, راتوں کو دیر سے آ رہا ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے, ماں باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے, ماں باپ اس کو کچھ بھی نہیں بولتے, ایسا ہی ہے نا. اور وہی لڑکا کسی شیخ کے پاس چلے گیا, اللہ اللہ کرنے لگا اور جناب اب دین کا, اب اس کے پیچھے پڑ جائیں گے وہ بھی, خاندان والے بھی. کیسی عجیب بات ہے, جہاں بولنا چاہیے تھا وہاں بولتے نہیں ہیں, جہاں خاموش رہنا چاہیے وہاں بول پڑتے ہیں. کیسا ایک عجیب رویہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کر رہا ہے, کام میں لگا ہوا ہے اور اچھی باتیں سیکھ رہا ہے. بلکہ اب وہ پہلے ماں باپ سے لڑتا جھگڑتا تھا, اب ماں باپ کے پیر دباتا ہے, اب الٹا اس کو دباتے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کا مزاج عجیب ہے. خوش ہونا چاہیے کہ دیکھو لڑکا خدمت کر رہا ہے, ورنہ آج کل تو عالم کیا ہے, اولادیں کہاں پوچھتی ہیں, ورنہ عالم کیا ہے تو اولادیں کہاں پوچھتی ہیں. اب وہ اولاد اگر خدمت کرے الٹا اور اس کے پیچھے پڑ جا. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. دین بڑی چیز ہے, دین بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے, ابھی ہمارے ایک دوست کی دعوت تھی تو ان کا خاندان ایسا ہے شرائکیہ بہرحال, تو وہ سب ٹیبل کرسی پہ تھے. تو میں نے کہا بھائی ہمارے لیے تو, ہم تو زمینی لوگ ہیں, دقیانوسی ہمارے لیے تو زمین پہ لگانا. اب ہو یہ رہا تھا کہ ٹیبل کرسی کا نظام آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹیبل کرسی پر ہو تو سب اپنی کرسی سے جاتے ہیں, ایک جگہ کھانا رکھا ہوتا ہے وہاں سے لے کے آتے ہیں, اور ہم زمین پر بیٹھے ہوئے تھے تو کھانا ہمارے پاس آ رہا تھا. میں نے کہا دیکھو یہ فرق ہے کہ مرغی پولٹری فارم میں وہ مرغیاں جو کہ مالک کو جس کو صرف بیچنا ہوتا ہے, ادھر کی ادھر کرنا ہوتا ہے, تو اس مرغی کے لیے کیا کرتا ہے, دانا یوں پھینکتا ہے اور وہ مرغیاں خود جاتی ہیں دانا چگ کے چگ لیتی ہیں. اور جس مرغے سے مالک نے کام لینا ہوتا ہے نا, اس کو اپنی گود میں بٹھاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے. میں کہا ایسی دیکھو اللہ کے لیے دین کے کام میں لگو, اور دین کے نام کام میں لگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو دین کے کام میں لگے ہوئے ان کے ساتھ لگ جائے, یہی صحبت ہے. دین کے کام میں لگے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ لگ جائے, پھر اللہ تعالیٰ رزق دونوں کو ملے گا, ان کو دانے بکھیر کے ملے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ بٹھا کر اب کھلائیں گے, ان کو اللہ تعالیٰ بٹھا کر کھلائیں گے. اس لیے یہ نہ سمجھے کہ دین کے کام میں لگیں گے تو کہیں گے کہاں سے, اللہ تعالیٰ کا کام کریں, اللہ تعالیٰ گود میں بٹھا کے کھلائیں گے جناب. इज्जत के साथ खिलाएंगे। हाँ, अलबत्ता इतनी बात, मेरे शेख की बात याद आई, हजरत वाला रहमतुल्लाह फरमाया दीन के काम में लगने की फिक्र करो, अगरचे रूखी सूखी मिले। खाने की तरफ देखो, अब मुरगन खाने वाला भी कब्र में जाएगा, बल्कि एक दिन उसके मुरगन खाने सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब डॉक्टर पाबंदी लगाएगा, कहेगा आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपको ये बीमारी है, आपको ये बीमारी है, आपका पेट खराब है, आपका मैदा खराब है। लगाते पाबंदी के नहीं तो कहां तक मुरगन खाने खाएगा। इसलिए फरमाया कि खाने की तरफ नजर मत करो कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, बल्कि काम में लगो, रूखी सूखी भी मिले उस पर गुजार करो। वजह यह है कि खाने पीने वाले का खाना पीना एक दिन बंद हो जाएगा। अगर डॉक्टर बंद नहीं करेगा तो डॉक्टर अज़राइल अलैहिस्सलाम तो बंद कर देंगे, जब वो बंद कर देंगे अब क्या करेगा। लेकिन दीन का जो काम है, अल्लाह तआला का जो नाम है, दीन की जो खिदमत है, वो बाकी रहेगी, वो बंद नहीं होती। इसलिए फरमाया कि दीन के काम में लगो, जैसी रूखी सूखी मिले शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला अगर वसत दे दे तो शुक्र अदा करो, नहीं वसत दे तो भी अल्लाह का सब्र करो, लेकिन फरमाते तो दीन के काम में लगो। और मखलूक में किसी पर नजर ना रखो, मखलूक पर नजर ना रखो कि ये हो जाए, वो हो जाए हमें। और फिर एक बात और फरमाते थे देखो, दीन का काम जब करना हो तो असबाब के पर दीन का काम मत करो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसी पर दीन का काम करो। ये नहीं करो कि वो भी मिलेगा फिर करूंगा, मोटरसाइकिल होगी फिर जाऊंगा, गाड़ी होगी फिर जाऊंगा, फला चीज होगी फिर करूंगा, नहीं ऐसे नहीं, जैसे है वैसे करो। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ में क्या हालात थे, कैसे हालात थे, कैसे काम किया। मदीना शरीफ आए हालात तले की नस्बत कुछ बेहतर हुए। ग़ज़वा बद्र का मौका आया, सहाबा के पास जो था उसी से अल्लाह ताला के रास्ते में जो है वो किताल के लिए निकल गए। ये नहीं कहा कि चलो पहले जो है गन तो इम्पोर्ट करें, फला चीज इम्पोर्ट करें, ये हो गया कैसे लड़ने जाए, नखरे पहले शुरू कर देते काम का होता नहीं। हालांकि जो काम करे तो बरकत उसमें खुद ही हो जाएगी, ज्यादा नतीजा अल्लाह ताला ने बरकत दी। और अगर असबाब पर नजर रखी, असबाब पर नजर रखी, नतीजा ये होगा काम ना हो सकेगा। दादा जैसे वो काम करे असबाब भी आ जाएंगे। इसलिए असबाब पर नजर रखने वाला यकीन जाने बेवकूफी और हमाकत है ये, क्योंकि सारे असबाब जो है वो बेकार है, सारे असबाब बेकार है, अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं। लहजा कैसा आलामत है, खाने की चीजें खा नहीं सकता, असबाब मौजूद है इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए असबाब पर नजर रखना ये नहीं, असबाब को इख्तियार करना इसको तो शरीयत ने सिखाया, लेकिन असबाब पर नजर रखने को मना फरमाया। लहजा इसकी एक मिसाल देखिए, हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा लाहौर में सियानतुल मुस्लिमीन का जलसा था, असर के बाद हजरत का बयान होता था, बयान फरमा रहे थे तो अचानक बिजली चली गई। जनरेटर चलाओ, लाओ भाई लाइट नहीं, माइक चलाओ। हजरत ने फरमाया कि बस, और बिजली का जनरेटर का इंतजाम नहीं था, अब सब परेशान। हजरत फरमाया घबराओ मत। हजरत खड़े हो गए, कुर्सी पर तशरीफ फरमाते खड़े हो गए और फरमाया आप बेफिक्र है, मैं अपनी आवाज पहुंचाऊंगा। और अल्लाह की शान देखे वो पूरा, हालांकि वो मस्जिद का सहन बड़ा है, हजरत की आवाज इतनी नहीं है, ये हजरत की करामत थी कि अल्लाह ताला ने वो आवाज पूरे मजमे को पहुंचा दी। और पूरे मजमे ने कहा कि ऐसे सुनी गोया हम माइक से सुन रहे। ये है क्यों, नजर किस पर, अल्लाह पर रखी नजर, अल्लाह ताला पर रखी। माइक हो ठीक है, न माइक हो वैसे ही शुरू हो जाए, इसमें क्या है। बात समझाने किस पर, असबाब पर, कि माइक मौजूद था उसको इस्तेमाल फरमाया कि चलो जी मुकब्बिर उस सौत है, आवाज पहुंचाने का जरिया, आवाज पहुंचा दी। और जब माइक बंद नहीं हुआ, जब माइक बंद हो गया तो अपनी जान भी तो एक सबब है, जान को पेश कर दिया, सुभान अल्लाह। हालांकि हजरत की वो बड़ी उम्र का जमाना था, जवानी का नहीं बड़ी उम्र का जमाना, लेकिन इस पर फिक्र नहीं की। इसलिए जवानी को, असबाब को अल्लाह पर फिदा करे, इस्तेमाल करे, जैसे हो जिस हालत में हो काम करने की फिक्र करे। और उसके लिए सबसे पहला जो कदम है कि जो काम में लगे हुए हैं उनके साथ लग जाए, जो काम में लगे हैं उनके साथ लग जाए, अल्लाह ताला फिर उस लगने को जब कबूल फरमाते हैं तो इसको भी लगा देते हैं। इसलिए फरमाया ना कि बुजुर्ग फरमाते ना, देखो तबलीग तो है लगने का नाम, लगाने का नाम है, तो लगाएगा वो जिसको लगेगी, जिसको अपनी ना लगी हो किसी को क्या लगाएगा। नहीं जब चोट ही खाई तो जख्म दिल दिखाऊं क्या, और नहीं जब कैफो मस्ती दिल में तो फिर गुनगुनाऊं क्या। हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने बात फरमाई कि जब चोट नहीं है तो दिल का जख्म दिखा सकता है, क्या लगाएगा, और जब कैफो मस्ती नहीं है तो क्या गुनगुनाएगा। राजा पहले लगवाए फिर इंशाल्लाह लगाएगा, और अगर लगाने की फिक्र पहले की और लगी नहीं है तो फिर लगी नहीं सकती। याद रखिएगा हर चीज का एक वक्त होता है। दादा लगने वालों के साथ लग जाए, जब लग जाएगी फिर ये भी लगाएगा, फिर अल्लाह ताला इसको काम में लगाएगा। और इसको मामूली न समझे, जो काम में लगे हुए हैं उनके साथ लगना ये मामूली बात नहीं है, ये भी खिदमत दीन में लिखा जाएगा। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि मैं अपने शेख के सर पर तेल मालिश, सर में तेल डाल रहा था, तेल मालिश कर रहा था, हथौड़े नहीं बरसा रहा था। वो मालिश नहीं कहते उसको, तो हथौड़े बरसाना बोलते हैं, धन धना धन ढन ढन ढन, वो हथौड़े बरसाने वाला नहीं, मैं तेल मालिश है, मालीदन मलने के माने में तेल मालिश कर रहा था। हजरत फरमाते हैं कि और मैं अल्लाह ताला से चुपके चुपके दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरा शेख है, मेरा मुर्शिद है, दीन की खिदमत की, अब ये हजरत थक गए हैं, अब वो मैं मशीन में तेल डाल रहा हूँ, ताजा हो जाएंगे, आराम फरमाएंगे, ताजा हो जाएंगे, दीन का काम करेंगे, उस दीन के काम में मेरा हिस्सा लगा दीजिए। तो पता चला दीन के काम में जो लगे हुए हैं उनके साथ लगने वाला वो महरूम नहीं रहेगा। दादा जो लगे हुए हैं उनके साथ लग जाए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसे भी लगाने में कबूल फरमा लेंगे, हिस्सा उसका भी लग जाएगा। ठीक है ना, एक एक आलिम है, कोई मदरसा चला रहा है, अब एक आदमी, अब वो जाहिर बात है जब वो मदरसा चलाएगा उसके इंतजाम में लगेगा तो कमाने तो नहीं जा सकता वो। अब एक आदमी अपना माल पेश कर रहा है कि ये लीजिए मौलाना साहब, ये लीजिए आपके दीन के खाम के लिए ये पैसा। अब वो जो वो पैसा लगा रहा है, अब बताइए उसको अजर नहीं मिलेगा क्या, महरूम रहेगा क्या वो? तो इसी तरह से पता चला जो लगे हुए हैं उनके साथ लग जाए, लगे हुए के साथ लग जाए, इंशाल्लाह अल्लाह इसे भी लगा देंगे, उसको भी कहीं ना कहीं फिट कर देंगे अल्लाह भैया। अल्लाह ताला हम सब पर फजल फरमाए और मकबूल खिदमत दीन की तौफीक अता फरमाए, और दीन की खिदमत में इस बात को याद रखे अपने असलाफ के तर्ज को ना छोड़े, अपने असलाफ के, अपने बड़ों के, अपने पहलों के तर्ज को ना छोड़े। ये नहीं कि जी इस जमाने में ये है, इस जमाने में वो है, बगैर तस्वीर के, बगैर मीडिया के, बगैर टीवी के दीन कहाँ फैल सकता है। कोई एक मिसाल ऐसे दे सकते हैं कि टीवी को देखकर किसी ने अपनी नमाज दुरुस्त कर ली, टीवी को देखकर किसी ने गुनाह छोड़ दियो, कोई एक आदमी टीवी देखकर मुत्तकी बन गया, क्योंकि टीवी देखना खुद मुत्तकी ना होने की अलामत है। लेकिन कोई एक आदमी टीवी देखकर मुत्तकी बन गया हो, नमाजें मसाइल उसके दुरुस्त हो गए हो, लेकिन अल्लाह वालों की सोहबत की एक नहीं हजारों नहीं लाखों मिसाल मिल जाएगी। तो पता चला दीन सोहबतों से आता है और इन चीजों से नहीं आता, मीडिया से नहीं आता। अल्लाह ताला हम सब पर फजल फरमाए, अपने असलाफ के तर्ज को ना छोड़े, अपने बुजुर्गों का जो तरीका है। मेरे प्यारे दोस्तों मुस्तनद रस्ते वही माने गए, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, और लौट आए जितने फरदाने गए। जिनने अकल से हिसाब, इस जमाने में मीडिया और ये सब याद रखे, हम लोग अगर इस तरह करेंगे अल्लाह को ना पा सकेंगे। लौट आए जितने फरदाने गए, ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए, ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए, और आह को नस्बत है कुछ उस शाख से, आह को नस्बत है कुछ उस शाख से, आह निकली और पहचाने गए। वक्फे वक्फे से आह की आवाज आतिश गम की तर्जुमानी है, हजरत का शेर है। वक्फे वक्फे से आह की आवाज आतिश गम की तर्जुमानी है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को भी माफ फरमाए, तकवा की हयात भी अता फरमाए, और अल्लाह ताला 100% अपना फरमाबरदार बनाए और खिदमत दीन की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।